इशिका की जान कुछ अनजान लोगों ने बचाई थी। उसके बाद पृथ्वी ने इशिका को ढूंढ लिया था। भले ही दुनिया के लिए इशिका मर चुकी हो, लेकिन अभिमन्यु इस सच को जानता था कि उसकी इशिका जिंदा है। इशिका अभिमन्यु के क्रूज पर थी। अभिमन्यु उससे मिलने के बाद वहां से चला गया था। अभिमन्यु के जाने के बाद पृथ्वी उसका ध्यान रख रहा था। इशिका ने पृथ्वी को अनन्या की जानकारी निकालने के लिए भेजा था। रात को लंबी नींद सोने के बाद इशिका जब सुबह उठी तो पृथ्वी ने उसे अनन्या के बारे में बताया। अनन्या का असली नाम ईशानी था, जिसके बारे में अनन्या ने उसे छुपाया था। ईशानी अब इस दुनिया में नहीं रही थी और वो अपने पीछे काफी सारे राज छोड़कर गई थी। इसके बारे में सोचकर ही इशिका परेशान हो गई। पृथ्वी ने इशिका के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर कहा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। कुछ सीरियस है क्या? इशिका ने जल्दी से पूछा, क्योंकि पृथ्वी के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी इंटेंस थे। हाँ, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगी। कोई भी लड़की नाम छुपाकर आपसे मिलने के लिए क्यों आएगी? आखिरी बार आप उसी के साथ थीं और आपकी जान जाते जाते बची थी। मैम, मैं नहीं चाहता कि आप इन सब में पड़ें। यही आपके और सर के रिश्ते के लिए सही रहेगा। मुझे उस लड़की की फैमिली भी बहुत अजीब लगी थी। उन्होंने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो अनन्या या ईशानी जो भी है वो कहाँ गायब हो गई। वे उसे ही भला बुरा कह रहे थे। पृथ्वी ने इशिका को सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, इशिका ने उसे टालने के लिए कहा। इशिका के कहते ही पृथ्वी तुरंत वहां से चला गया। पृथ्वी के जाते ही इशिका के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। उसने अपने मन में कहा, उसकी फैमिली अजीब थी, तब तो मेरा वहां जाना जरूरी हो गया। ईशानी ने बताया था कि उसकी 2.5 साल की बेटी है। पता नहीं इस वक्त वो किस हाल में होगी। उसके पति का अफेयर था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन रूही बहुत मासूम है। वो अपनी मॉम को मिस कर रही होगी। माँ के बिना रहना कैसा होता है, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। सोचते हुए इशिका की आंखें भर आई थीं। उसे न जाने क्यों ईशानी से इतने कम वक्त में इतना अटैचमेंट हो गया था। पृथ्वी के होते हुए इशिका का वहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। वो वापस कमरे में आई और ब्रेकफास्ट किया। पूरे दिन उसने पृथ्वी के जाने का इंतजार किया। शाम के लगभग 5 बजे के करीब पृथ्वी इशिका के पास आया और बोला, मुझे गोवा जाना पड़ेगा, वहां सर अकेले हैं। सर अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम जा सकते हो, मैं यहां अपना ध्यान रख सकती हूँ, इशिका ने शांत लहजे में कहा, हालांकि वो मन ही मन काफी खुश हो रही थी। पृथ्वी ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, आपके यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, हमारे गार्ड यहाँ मौजूद रहेंगे, और मेरी जगह आपका ध्यान रखने के लिए मैं एक असिस्टेंट छोड़कर जा रहा हूँ, उसका नाम सांची है। इशिका ने पृथ्वी को जाने के लिए कह दिया था। पृथ्वी के जाते ही इशिका जल्दी से कमरे से बाहर आई तो वहां सामने उसे सांची नजर आई। वो लगभग 28 साल के आसपास थी, जिसने ब्लैक कलर की लेदर पैंट्स के ऊपर लेदर टॉप और जैकेट पहना हुआ था। उसके बाल डच ब्रेड में सेट किए हुए थे। इशिका को बाहर देखते ही सांची जल्दी से उसके पास आकर बोली, आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिए। हाँ, इसीलिए बाहर आई थी, मुझे कपड़े चाहिए, वो भी आधे घंटे के अंदर, इशिका ने जवाब दिया। हाँ तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, सर ने पहले ही आपकी जरूरत का सामान यहाँ रखवा दिया था, सांची झट से बोली। इशिका ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आया कि वो सांची को अपनी डिमांड्स कैसे बताएं। वो कुछ सोचकर बोली, मुझे ब्लैक कलर के कॉन्टैक्ट लेंस चाहिए, मेकअप का सामान चाहिए, एक मास्क और कुछ सनग्लासेस भी चाहिए होंगे। आप ये सब क्यों मंगवा रही हैं? आपको छुपाकर कहीं जाना है क्या? सांची ने उसे घूरते हुए पूछा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि इशिका ये सामान किस लिए मंगवा रही होगी। इशिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, अब जितना कहा है उतना करो, तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है। सांची ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वो वहां से जाने को हुई तभी इशिका ने पीछे से सख्ती से कहा, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पृथ्वी और अभिमन्यु को भी नहीं। सांची उसकी तरफ पलटकर बोली, डोंट वरी, अगर मैंने उन्हें बताया तो मेरी ही जबान खतरे में आ जाएगी। मैं आप पर यकीन करके ये सारा सामान लाकर दे रही हूँ, उम्मीद है कि रात होने से पहले आप लौट आएंगे। इशिका ने उसकी बात पर ध्यान दिया। लगभग 40 मिनट बाद सांची उसके बताए सामान के साथ आ चुकी थी। वैसे भी उनका क्रूज जिस जगह पर था वहां से पास का टाउन ज्यादा दूर नहीं था। सारा सामान लेकर इशिका अंदर गई और लगभग 20 मिनट में तैयार होकर बाहर आ गई थी। उसने अपने चेहरे पर मेकअप कर रखा था। आमतौर पर इशिका मेकअप नहीं लगाती थी, इस वजह से मेकअप लगाने पर वो थोड़ी अलग लग रही थी। आंखों में ब्लैक लेंस लगाने के बाद वो अपनी नेचुरल लुक से थोड़ा ही अलग लग रही थी, इसलिए इशिका ने खुद को छुपाने के लिए मास्क पहना और सनग्लासेस लगा लिए थे। इशिका को देखने के बाद सांची ने कहा,
वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। आपको क्या लगता है, आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने और अपने चेहरे के तिल छुपाने से आप बदल जाओगी? मुझे बदलना भी नहीं है, बस इशिका जैसी नहीं लगना चाहती, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। अपने साथ जरूरी सामान लेकर इशिका ईशानी के घर जाने के लिए निकल गई थी। शाम के लगभग 6 बजे के करीब इशिका ईशानी के घर पर पहुंची। वो एक छोटा लेकिन खूबसूरत घर था। इशिका ने छोटा सा गार्डन पार करके दरवाजे पर कदम रखा ही था कि उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। एक लगभग 45 साल की औरत जिसका गेरुआ रंग था, वो एक छोटी बच्ची पर चिल्ला रही थी। उसके हाथ में दूध की बोतल थी। इशिका ने पहचान लिया था कि वही रूही होगी। उसकी शक्ल काफी हद तक ईशानी से मिलती थी। रूही को देखते ही इशिका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। न जाने क्यों उसे इस बच्ची से इतना लगाव महसूस हो रहा था। इशिका ने अपने मन में कहा, कितनी प्यारी है ये। तभी ईशानी इसे इतना प्यार करती थी। इशिका खोई हुई निगाहों से रूही को देख रही थी। वहीं उस औरत ने रूही के बाल पकड़ कर कहा, पता नहीं तेरी माँ कहाँ मर गई और इस आफत को मेरे सर पर छोड़ गई। तुझे दूध पीना है तो पी, वरना मेरा टाइम खराब मत कर। उस औरत के बाल खींचने पर रूही रोने लगी। वो अपनी मासूम आवाज में रोते हुए बोली, दादी प्लीज मुझे मत मारो, मम्मा, रूही को मम्मा चाहिए। रूही को तो मम्मा चाहिए, लेकिन तेरी माँ पता नहीं कहाँ जाकर मर गई है, वो अब नहीं आएगी। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती थी, अब खुद अपने आशिक के साथ चली गई, उस औरत ने गुस्सा करते हुए कहा। उसे देखकर इशिका समझ गई थी कि वो ईशानी की सास होगी। इशिका उनकी तरफ देख रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर अचानक हाथ रखा। वो वहां छुप कर आई थी और इस तरह पकड़े जाना उसके और अभिमन्यु दोनों के लिए सही नहीं था।